अमृत वाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को बिदाने वाली है, बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है, मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृत वाणी अमृत वाणी
विहंगम योग दर्शन के अंदर श्वेत शब्द की बड़ी महिमा गाई गई है। सद्गुरुदेव ने कहा कि मेरी जो ध्वजा है वह चतुष्कोण है। चतुष्कोण का मतलब क्या है? चारों कोणों में फहराएगी, भूमंडल में फहराएगी, और उस पर लिखा गया है अ। अ से क्या मतलब है? विहंगम योग का जो सिद्धांत है, सद्गुरुदेव का जो सिद्धांत है, वह यह है कि ओम बना है किससे? सबसे पहले अ आया है, और अ जो है यह आर्ष प्रयोग है। जो भी हमारे वैदिक दर्शन हैं, जो आर्ष ग्रंथ हैं, उसमें अ का प्रयोग प्रथम आता है। जैसे वेद में है अग्न आया ही बीतये, अग्निमीडे पुरोहितम, इसमें सबसे पहले अ आता है। व्याकरण का महान ग्रंथ है महाभाष्य, उसमें आया है कि अकारो वही सर्वावाक, और जो है सभी वर्णों में व्यापक है। व्याकरण का जो महान ग्रंथ है अष्टाध्यायी, उसमें आरंभ होता है अयूण, पहले अ, और पश्चात में लिखा है अ अ, वहां पर अ अ दो बार लिखा गया है। तो जो वर्ण आस ग्रंथों में है और सर्वप्रथम है, मैं पूछता हूं वह अनार्ष कैसे हो गया? वह तो आर्ष है, उसका प्रयोग ऋषि ने किया है, अकारो वही सर्वावाक, और जो है सभी वर्णों में व्यापक है। जितने भी वर्ण हैं सबसे पहले उसमें अ आता है, और अ से मतलब क्या है? अ जो है सद्गुरुदेव कहते हैं क्या है? ब्रह्म का संकेत है। अ जो है मंगल सूचक शब्द है। अ जो है विहंगम योग के दर्शन के अंदर एक व्यापक तत्व है। अ से मतलब है अजर, अमर, अनाद, असीम, अनंत। भगवद गीता के अंदर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि अक्षरों में मैं आकार हूं, मासों में क्या हूं? अगहन मास हूं, और जो है विहंगम योग का मूल तत्व है, विहंगम योग का परम तत्व है, विहंगम योग का सार तत्व है और से मतलब है अक्षर सत्ता से, और से मतलब है अक्षर ब्रह्म से, और संकेत है सद्गुरु मंडल का, और संकेत है ब्रह्म मंडल का। अध्यात्म के अंदर अक्षर की ध्वनि है, अक्षर का प्रकाश है, तो अ से मतलब है परमाणु मंडल, अ से मतलब है अक्षर मंडल। विहंगम योग की जो चौथी श्रेणी है, जो साधक विहंगम योग की साधना कर रहे हैं चौथी श्रेणी में, वे भली भांत परिचित हैं कि अ क्या है और अ का जो शब्द है, अ की जो ध्वनि है किस मंडल से होती है। अ का जो मंडल है वह कोई ब्रह्मांडी मंडल नहीं है, वह जो शब्द है पंच केंद्रों में नहीं है, वह जो शब्द है भौतिक जगत में नहीं है। उस शब्द का आधार भौतिक इंद्रियां नहीं है, उसका आधार चेतन है और उसका आधार नित्य है, और जो है ब्रह्म का संकेत भी है। जाप अजपा हो सहज ध्वनि परख गुरु गम धारिये, तो गुरु गम धारण करने की जगह कहाँ है? प्रकृति में नहीं है, देह में नहीं है। सदगुरु की जो भूमि है वही तो अ की भूमि है, वही तो अक्षर की भूमि है। तो अ का जो भेद है, अ का जो रहस्य है, भौतिक संसार में तो है ही, वेद में तो है ही, व्याकरण में तो है ही, संत वाणी में तो है ही। विहंगम योग का जो दर्शन है, जो आधारशिला है, उसमें क्या है? अक्षर है और परम अक्षर है। अक्षर धनुष, अक्षर धनुष भेद गमताना, सुरत तीर सतपुरुष ने थाना। अक्षर पार निअक्षर भरपूर, कहें मुनिन्द्र सो सत्य कर्मानिये। चाचरी भूचरी अगोचरी उन मुनि खेचरी, पांचों की गम नाही अधर तान तानिये, रेचक पूरक कुंभक के ढंग नाही। पढ़े गुनय वाद करे कबहु नहीं मानिए, श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। अक्षर पार निह अक्षर भरपूर, कहें मुनिन्द्र सो सत्य कर मानिए। तो विहंगम योग का जो दर्शन है वह स्थिर है अक्षर पर, परम अक्षर पर। तो अ का जो विज्ञान है वह दो तरह का है। एक विज्ञान वहाँ पर है जहाँ पर वर्ण हैं, अक्षर हैं, और एक विज्ञान वहाँ पर है जहाँ पर अध्यात्म है। भगवद गीता के अंदर कहा गया है कि अध्यात्म कहाँ है? जहाँ पर अक्षर का आधार है, जहाँ पर अक्षर की भूमि है, अध्यात्म वहाँ पर है जहाँ पर परमाणुओं का योग वियोग है, अध्यात्म वहाँ पर है जहाँ पर विहंगम योग का साधक उस विशेष मंडल में अक्षर की आवाज को सुनता है, अक्षर के शब्द को श्रवण करता है, उस भूमि पर जो भूमि जड़ नहीं है, जो भूमि चेतन है। अनहद बाजा बाजता अक्षर शोर मचाए, अमीय बूंद झरिलाइया गगन महल गहराए। तो अक्षर जो है जड़ नहीं है, अक्षर का आधार चेतन है। और यह जो ध्वजा है हमारी क्या है, श्वेत है। कई तरह के रंग होते हैं, लाल है, पीला है, हरा है, गुलाबी है, बैंगनी है, सारे रंगों को सूर्य जो है मिटा देता है, लेकिन यह जो श्वेत रंग है बंधुओं, यह मिटने वाला नहीं है। चाहे रंग लाल हो, पीला हो, काला हो, हरा हो, गुलाबी हो, बैंगनी हो, सारे रंग फीके पड़ जाते हैं, लेकिन आपका यह जो श्वेत रंग है, सद्गुरुदेव कहते हैं कभी भी फीका नहीं पड़ता। करी पिपील के पंथ में कैसे कर प्रवेश, श्वेत सदन श्वेती ध्वजा फहराती वह देश। स्वरवेद का सिद्धांत है कि एक श्वेत भूमि होती है, श्वेत सिंहासन होता है, श्वेत ध्वजा होती है। यह जो ध्वजा है अध्यात्म विद्या की, परा विद्या की, ब्रह्म विद्या की, यह श्वेत इसलिए है कि विहंगम योग के अंदर श्वेत भूमि है, श्वेत ध्वजा है, श्वेत सिंहासन है, श्वेत श्वेत मय श्वेत है, श्वेत श्वेत मय श्वेत, तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानद श्वेत। इस दोहे में श्वेत जो शब्द है आठ बार आया हुआ है। तो श्वेत जो है एक मंडल है, श्वेत एक भूमि है, श्वेत एक प्रकाश है, श्वेत जो है विहंगम योग का एक चेतन तत्व है, चेतन शब्द है। तो यह जो अ है कभी भी अनाश नहीं है। जो अ को अनाश कहते हैं वे अविवेकी हैं, वे मूढ़ हैं। अ तो ब्रह्म का संकेत है, और सद्गुरुदेव ने कहा है कि अ जो है यह तो आश प्रयोग है। तो बंधुओं, यह जो ध्वजा है अंकित, इसका एक विशेष मंडल है, इसका विशेष महत्व है। ध्वजा श्वेत अभेद अंकित विश्व पाराने चहूं, आज्ञा तुम्हारी सत्य राखो जन सदा फल पद गहूं। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरी जो ध्वजा अंकित है भूमंडल में फहराएगी, और भूमंडल के जो भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, जिनके अंदर अध्यात्म का दिग्दर्शन है, वे इस श्वेत ध्वजा के नीचे आएंगे और विश्राम शांति पाएंगे। जहां पर अंकित ध्वजा रहती है वहां पर क्या होता है, डर भय भाग जाता है। डर भय से हम दूर हो जाते हैं। जिस घर में श्वेत ध्वजा फहराती रहती है वहां क्या होता है, सदगुर का वास हो जाता है। और साधक कभी डरता नहीं है, कभी भय नहीं करता है। ध्वजा अंकित जगत फहराय बसु अमृत झरे। और जो है इसको सद्गुरुदेव ने कहा कि यह अमृत है। तो इस तरह से बंधुओं, और जो है आर्ष प्रयोग है। अ का संकेत जो है मंगल सूचक है। अ में क्या है, सरलता है, सुगमता है। यह जो ध्वजा है सौहार्द का, शांति का प्रतीक है, सहानुभूति का प्रतीक है। जिस घर में श्वेत ध्वजा होती है उस घर में शांति का वातावरण हो जाता है, उस घर में सदगुर का वास हो जाता है। श्वेत ध्वजा फहराने के पूर्व में विहंगम योग संस्थान के साधकों ने, योगाचार्यों ने आपके बीच आसन प्राणायाम सिखाया। कल भीड़ थी स्वर वेद की कथा में, और अभी भीड़ है यज्ञ हवन के समय में। लेकिन आसन प्राणायाम के समय में बिल्कुल भीड़ नहीं थी। मैंने सेवक से पूछा कि जाकर देखो कितने लोग आसन प्राणायाम सीख रहे हैं। सेवक ने कहा कि 50 व्यक्ति हैं बस, उसमें कुछ बहने भी हैं, कुछ भाई लोग भी हैं। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने सोचा कि विहंगम योग के जो साधक हैं वे स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, शरीर के विषय में कुछ नहीं सोच रहे हैं। स्वर वेद की कथा आप सुन रहे हो लेकिन आपके पैर में अचानक दर्द हो जाए, आपके सिर में दर्द हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, स्वर वेद की कथा आप नहीं सुन पाओगे। ज्येष्ठ आत्मज विज्ञान देव महाराज कल तो कम बोले, कथा होती है 3 घंटे तक, कभी कभी 4 घंटे तक बोलते हैं। और उस क्रम में आपके पेट में दर्द हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, टांग में दर्द हो जाए, कथा का श्रवण आप कैसे करोगे। सबके मूल में क्या है, स्वास्थ्य है। सब कुछ है और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लगता है कि कुछ भी नहीं है। संसार के अंदर कई सारे सुख हैं, उसमें एक सुख ये भी है कि हम जब तक शरीर में रहें निरोग रहें। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड् जीवलोकस्य सुखानि राजन्। संसार के अंदर सबसे बड़ा सुख क्या है? शरीर आपका निरोग रहे, स्वस्थ रहे। और क्या सुख है? आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, धन का आगम हो, और क्या सुख है? आपकी जो धन पत्नी हो कैसी हो, मधुर भाषणी हो, मधुर बोलने वाली हो, और क्या सुख है? घर में युवा लड़का हो, युवा बेटा क्या होता है? बूढ़े बाप का सहारा होता है, वो भी परिवार में बहुत बड़ा एक सुख का साधन होता है। और क्या सुख है? आपके पास ऐसा हुनर हो, ऐसी विद्या हो जिसके द्वारा आप अर्थ का उपार्जन कर सकें, यही संसार का सुख है। घर में प्रतिदिन धन का आगम हो, शरीर से हम स्वस्थ रहें, धर पत्नी मधुर भाषणी हो, युवा लड़का हो, और अपने पास ऐसा हुनर हो, ऐसी कला हो जिसके द्वारा हम अर्थ का उपार्जन कर सकें। तो मैं देख रहा हूं कि विहंगम योग के साधक स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, जबकि सब कुछ होने वाला है शरीर से ही। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज लिखे हैं पुस्तक योग चंद्रिका। उस योग चंद्रिका में क्या है? आसन है, प्राणायाम है, खट क्रिया है। विहंगम योग के साधक को प्रतिदिन आसन करना चाहिए, प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए। विहंगम योग के प्रणेता सद्गुरुदेव भगवान प्रतिदिन आसन प्राणायाम करते थे। प्रथम आचार्य से प्रतिदिन आसन प्राणायाम करते थे, वह परंपरा आज भी चल रही है। मैं भी प्रातःकाल प्रातः भ्रमण करता हूँ, प्रतिदिन आसन प्राणायाम करता हूँ, और जो भी हमारे विहंगम योग के साधक हैं उनको भी हम लोग बताते हैं कि प्रतिदिन आसन करो, प्रतिदिन प्राणायाम करो। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास। आसन से यह जो शरीर है वह निरोग होता है, शरीर से हम स्वस्थ होते हैं। आसन के कई प्रकार हैं, लेकिन अपने जो मुख्य आसन हैं उनको हमें प्रतिदिन करना चाहिए। सिद्धासन है, पद्मासन है, पूर्ण मुक्तासन है, सर्वांगासन है, मयूरासन है, शीर्षासन है, यह प्रत्येक साधक के लिए आवश्यक है। तो आसन जो है इसका जो संबंध है हमारे स्वास्थ्य से है। आसन स्थिर शांत दृढ़, हिले दुमे नहीं दे, बैठो मन मत मारी कर, सुमिरो पुरुष विधि। आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, आत्म अनुभव शांति का, जाहि छूटे अध्यास। आसन मारे आप में, आपा डारे खोय, कहें मुनिंद्र सो योगी सहजे निर्मल होय। तो आसन का जो संबंध है बंधुओं हमारे शरीर से है। आसन करने में हमें आलस नहीं करना चाहिए। आसन का अभ्यास सभी को करना है। आसन करने से आपका हृदय, आपका फेफड़ा, आमाशय ठीक तरह से कार्य करेगा, प्राणों में बल आएगा, ओज आएगा। ऐसे ही आसन करने के बाद प्राणायाम करने का विधान है। प्राणायाम के भी कई सारे भेद हैं। प्राणायाम में पूरक है, रेचक है, कुंभक है, प्राण अपान का मेल है, कहीं पर कपालभाति है, कहीं पर भस्त्रिका है, कहीं पर अनुलोम विलोम है, कहीं पर चंद्रभेदी है, कहीं पर सूर्यभेदी है। प्राणायाम के द्वारा बुद्धि का जो मल है वो दूर होता है, बुद्धि हमारी तीव्र होती है, साथ ही साथ जो साधक प्राणायाम करता है उसको मन के निग्रह में भी काफ़ी सहयोग मिल जाता है, क्योंकि प्राण और मन का जो है बहुत गहरा संबंध है। ज्येष्ठ आत्मा विज्ञान देव महाराज क्या कहते हैं कि शरीर की पुष्टि, इंद्रियों की तुष्टि में ही नहीं जीवन लगा देना है। विज्ञान देव महाराज का कहना यह नहीं है कि शरीर पर ध्यान मत दो, शरीर पर ध्यान दो, शरीर को पुष्ट करो, इंद्रियों को भी तृप्त करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन भर इसी में लग जाओ और मूल चीज को छोड़ दो। तो आसन प्राणायाम को हमें नहीं छोड़ना है। आसन प्राणायाम के द्वारा आप शरीर से स्वस्थ रहोगे, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। मन को स्वस्थ रखने के लिए, मन को निरोग रखने के लिए शरीर का आसन काम नहीं करता है। आसन प्राणायाम का संबंध मन से है कुछ अंशों में, लेकिन मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यकता है मन के आसन की। तन के आसन से मन का नियंत्रण नहीं होने वाला है। तन का आसन मन के नियंत्रण में सहायक हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा मन तो तभी स्थिर होगा, नियंत्रित होगा, जब हम मन का आसन करेंगे। आज सारे विश्व में धूम मची है किसकी? तन के आसन की। शरीर को खींचना है, शरीर को तानना है, श्वास को रोकना है, श्वास को छोड़ना है, क्या यही योग है? सद्गुरु देव ने कहा कि तन का आसन है जिसको सभी कर रहे हैं, क्या बूढ़ा क्या जवान, सभी लोग तन के आसन में लगे हुए हैं। विहंगम योग कहता है कि मन का आसन मैं बतलाता हूं, मन का आसन तन के आसन से भिन्न है। तन का आसन तो तन में होता ही है, मन का आसन भी तन ही में होता है, लेकिन उसका स्थान, उसका भेद, उसका रहस्य, उसकी भूमि अलग है। मन को हम कैसे रोकें, मन की गति को हम कैसे कैच करें, कितनी देर रोकें, कहाँ रोकें, इस विधि को जानना भी आवश्यक है। और जो भी विहंगम योग के प्रथम कोट के साधक हैं, मन को रोकने की क्रिया प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या करते हैं कि मन रुकता नहीं है, मन को हम कैसे रोकें? तन के आसन से मन का नियंत्रण नहीं होने वाला है, तन का आसन मन के नियंत्रण में सहायक हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा मन तो तभी स्थिर होगा, नियंत्रित होगा, जब हम मन का आसन करेंगे। आज सारे विश्व में धूम मची है, किसकी? तन के आसन की। शरीर को खींचना है, शरीर को तानना है, श्वास को रोकना है, श्वास को छोड़ना है, क्या यही योग है? सद्गुरु देव ने कहा कि तन का आसन है जिसको सभी कर रहे हैं, क्या बूढ़ा क्या जवान, सभी लोग तन के आसन में लगे हुए हैं। विहंगम योग कहता है कि मन का आसन मैं बतलाता हूं, मन का आसन तन के आसन से भिन्न है। तन का आसन तो तन में होता ही है, मन का आसन भी तन ही में होता है, लेकिन उसका स्थान, उसका भेद, उसका रहस्य, उसकी भूमि अलग है। मन को हम कैसे रोकें, मन की गति को हम कैसे कैच करें, कितनी देर रोकें, कहाँ रोकें, इस विधि को जानना भी आवश्यक है। और जो भी विहंगम योग के प्रथम कोट के साधक हैं, मन को रोकने की क्रिया प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न क्या करते हैं कि मन रुकता नहीं है, मन को हम कैसे रोकें? विज्ञानदेव महाराज क्या बोलते हैं, कि तुम्हारा मन कैसे रुकेगा, तुम तो स्वर वेर पढ़ते ही नहीं हो। जो साधक स्वर वेद का पाठ नहीं करेगा, जो साधक स्वर वेद की कथा का श्रवण नहीं करेगा, उसका मन कंट्रोल में कहाँ होगा। तो मन को रोकने के लिए आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, लेकिन आसन प्राणायाम करने से ही मन रुकने वाला नहीं है। स्वर वेद का पाठ करो, स्वर वेद की कथा का श्रवण करो, स्वर वेद की कथा जहां जहां हो वहां पर पहुंचो, कथा का श्रवण करो, मन तुम्हारा क्यों नहीं रुकेगा। मन तो रुकेगा ही, मन की गति को आप कैसे कैच करोगे इसका अनुभव आपको तब होगा जब आप स्वर वेद की कथा का श्रवण करेंगे, जब आप स्वर वेद का पाठ करेंगे। साथ ही साथ सद्गुरु से प्रार्थना भी करना है कि हे प्रभु, हे सद्गुरु, मेरे मन को रोको, मेरे मन का निग्रह करो। सद्गुरु से क्या छिपा है, सद्गुरु सब जानता है। सद्गुरु तो आपका माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, उससे आप क्यों छिपाते हो। खुलकर अपनी बात कहो, और जो निर्देश हो, आदेश हो, उसका पालन करो। मन को रोकना कठिन तो है ही है। अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मन बहुत चंचल है। मन को रोकना वैसे ही कठिन है जैसे कोई कहे कि मैं हवा को रोक लिया। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मन को रोकने का भी तरीका है, और वह तरीका क्या है। वह तरीका है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास क्या है, जिस क्रिया को जान करके हम उसकी बार बार पुनरावृत्ति करते हैं उससे हम अभ्यास करते हैं, वही अभ्यास जो है वैराग्य का रूप ले लेता है। तो आवश्यकता जो है मन के आसन की भी है। हमारे सद्गुरु देव ने कहा कि तन का आसन है, मन का आसन है, जीव का आसन है, और आसन है अक्षर मंडल का, अक्षर भूमि का। आसारा संसार तन के आसन में भूला हुआ है। आसन प्राणायाम अपने में संपूर्ण योग नहीं है। इसको बदलाने वाला आज विश्व में कौन है, एकमात्र विहंगम योग संस्थान है, एकमात्र स्वर वेद का दर्शन है, एकमात्र स्वर वेद का वाङ्मय है जो बतलाता है कि आसन प्राणायाम योग का एक अंग है। आसन प्राणायाम अपने में संपूर्ण योग कभी नहीं है और कभी नहीं होगा। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, यह योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो आसन प्राणायाम जो है बंधुओं योग का एक अंग है। संपूर्ण योग कभी नहीं रहा और कभी नहीं रहेगा। यह जो योग विद्या है कभी भी आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं रही है। योग जो है व्यापक शब्द है। योग सबके लिए है और योग का आधार भी कई तरह का है। अब थोड़ा हम विचार कर लें कि यज्ञ हम क्यों करें, यज्ञ की क्या आवश्यकता है, यज्ञ करने से क्या लाभ है। विहंगम योग में यज्ञ क्यों किया जाता है? बंधुओं, विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल जी महाराज ने जब प्रचार कार्य आरंभ किया तो प्रचार कार्य आरंभ करने के पहले 1,00,000 मंत्रों से आहुतियां दी थी। सिद्धियों का प्रकार कई तरह का है, जन्म है, मंत्र है, औषधि है, तप है और समाधि है। तो मंत्र भी एक सिद्धि है। मंत्रों के द्वारा बहुत से कार्य बड़े ही सरल हो जाते हैं। मंत्रों में भी एक विशेष ऊर्जा है। मंत्रों के द्वारा हम ऋषियों का आवाहन करते हैं, देवों का आवाहन करते हैं। उसका एक विशेष मुहूर्त होता है, समय होता है। ब्राह्म मुहूर्त में हम स्नान कर लेते हैं, सफेद फूल रख लेते हैं और गुरु विधान से ऋषियों का, देवताओं का आवाहन करते हैं। एक विशेष भूमि से हमें क्या मिलता है? ऋषियों की ऊर्जा मिलती है, ऋषियों की शक्ति मिलती है, ऋषियों के दर्शन होते हैं, उनका संदेश मिलता है, उनका संकेत मिलता है, उनकी वाणी प्राप्त होती है, दिशा निर्देश मिलता है। इस शरीर में एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा स्थल है जहां पर आसीन होकर के हम मंत्रों का आवाहन करते हैं, ऋषियों को बुलाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी शक्ति लेते हैं। जो भी हम मंत्र बोलते हैं यज्ञ हवन में, सभी मंत्रों के ऋषि भी अलग अलग होते हैं। आज हम यज्ञ हवन के माध्यम से आवाहन करेंगे गौतम ऋषि का, कपिल ऋषि का, विश्वामित्र ऋषि का, कणाद का, अग्नि का, अरिमा का, मेघातिथि का। सबके मंत्र अलग अलग हैं, ऋषि भी अलग अलग हैं। यज्ञ के द्वारा हमारी जो भावना है पवित्र होती है, शुद्ध होती है। यज्ञ के द्वारा वायुमंडल पवित्र होता है। यज्ञ के द्वारा अनेक रोगों का शमन भी होता है। यज्ञ का जो धुआं है वो धुआं किसका है? पेट्रोल का नहीं है, डीजल का नहीं है, कोयले का नहीं है। वह धुआं जो है आयुर्वेदिक अनेक जड़ी बूटियों का है। बहुत सी कामनाएं भी हमारे पास हैं। कामनाओं का, इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। ऋषियों ने कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग में जाना हो, स्वर्ग पहुंचना हो, क्या करे? प्रतिदिन हवन यज्ञ करे। स्वर्ग से मतलब क्या है? भौतिक कामना से है, भौतिक ऐश्वर्य से है, भौतिक सुख से है। यह विशुद्ध कर्मकांड है। विहंगम योग विशुद्ध अध्यात्म है। तो भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी यज्ञ हवन की आवश्यकता है। हम तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं। समस्या है आवास की, समस्या है बेरोजगारी की, हम अनेक रोगों से ग्रसित हैं। तो यज्ञ हवन हम क्यों करते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं भौतिक जगत की, वह सब दूर हो जाएं, हमारी जो दिशाएं हैं हमारे मित्र बन जाएं, हमारा कोई शत्रु ना हो। जब तक हम संसार में रहें सुखी जीवन यापन करें। यज्ञ हवन में हम आशीर्वाद लेते हैं ऋषियों का, उनका आवाहन करते हैं, माता पिता आचार्य गुरु हमारे क्या हैं, चेतन देवता हैं, इनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। आप सोचिए, माता पिता के संबंध से हम संसार में आए हैं, माता पिता का आचार्य का हम आदर करें, यह प्रेरणा मिलती है किसके द्वारा? यज्ञ हवन के द्वारा। यज्ञ हवन के द्वारा हमें शिक्षा मिलती है कि समाज में हम कैसे रहें। कुछ हमसे आयु में बड़े हैं उनका हम कैसे सम्मान करें, जो समान आयु के हैं उनके साथ हमारा व्यवहार कैसे दोस्ती का हो, जो हमसे आयु में छोटे हैं उनको हम कैसे प्यार दें, में स्नेह दें, में यह शिक्षा मिलती है यज्ञ हवन के द्वारा। यज्ञ हवन के द्वारा नाश होता है अविद्या का, नाश होता है अन्याय का, नाश होता है अभाव का।
विहंगम योग, मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है विहंगम योग। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सदगुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष भाषा जाति धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। प्रोजेक्ट विहंगम के तहत देश विदेश में अनेक सामाजिक सेवा कार्य चलाए जा रहे हैं। पूर्णतः निशुल्क चल रहे विहंगम स्वास्थ्य अभियान शारीरिक ही नहीं, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित करते हैं। नशा मुक्ति अभियान से लाखों लोग तंबाकू, शराब व अन्य नशीले पदार्थ छोड़ चुके हैं। मानसिक तनाव से होने वाले अनगिनत रोगों में विहंगम योग की साधना से विशेष लाभ होता है। विहंगम शिक्षा अभियान के तहत भौतिक एवं नैतिक दोनों ही प्रकार की शिक्षा सुनिश्चित की जाती है। विहंगम सुधार कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु सतत कार्यरत है। आज 2000 से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थी विभिन्न आवासीय गुरुकुलों में निशुल्क शिक्षा पा रहे हैं। विहंगम लाइफ वर्कशॉप आधुनिक समाज के व्यस्त जीवन में स्वास्थ्य, सुख व शांति का संदेश दे रहा है। विहंगम सुरक्षा अभियान जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देता है। मातृशक्ति कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण एवं कन्या भ्रूण हत्या निषेध के लिए अनवरत कार्यरत है। वृद्धाश्रम, वृक्षारोपण व गौ सेवा तो सैकड़ों विहंगम योगाश्रमों के अभिन्न अंग हैं। मानव कल्याण के इन अनवरत कार्यों हेतु विहंगम योग संस्थान अब संयुक्त राष्ट्र संघ हैबिटेट से भी मान्यता प्राप्त है। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें।
महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।